मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 12 नवंबर 2018 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान मित्रों का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं रंजना पटेल, खंडवा मध्य प्रदेश से, और दीपक सिंह, इनका गांव है हैदरगंज, जिला फैजाबाद, उत्तर प्रदेश से। तो रंजना और दीपक, आप दोनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं जल परिवहन विषय पर आप सबसे कुछ बातें करना चाहूंगा, लेकिन यहां मैं एक दो थोड़ी सी आपको बातें बता दूं। आपको ध्यान होगा कि बहुत लंबे समय से हम लोगों ने कुछ इस तरह की स्थितियां निर्मित की थी कि सोमवार को मैं आपसे एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के बारे में बातें करूंगा और फिर आगे हम लोग एक मुख्य विषय को लेकर के बात करेंगे। ठीक इसी तरह से लाइफ मैनेजमेंट में भी ये था कि हम सोमवार को किसी जीवन को लेकर के बात करेंगे, बायोग्राफी को लेकर के, उसके एक हिस्से को लेकर के। तो मित्रों, अब इस तरह के सिस्टम को मैं चाह रहा हूं कि इस सप्ताह से ब्रेक किया जाए। उस सिस्टम ने करीब 3-4 महीने तक काम किया है, सिस्टम बदले जाने चाहिए। तो अब मैं उस सिस्टम को फिलहाल कुछ समय के लिए स्थगित करने की आप सबसे एक तरफा अनुमति ही मैं कहूंगा, वो मैं चाहता हूं। आगे जैसी जरूरत होगी, बदलाव के तौर पर ही सही, उसे फिर शुरू करेंगे। लेकिन आइए अब इसको बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं, यानी कि जब जिस तरह की जरूरत महसूस होगी उसी तरह से मैं आप लोगों से बातें करूंगा। और इस रूप में आप लोगों से भी अब बड़े खुले तौर पर विषय आमंत्रित हैं। आप सब अपने अपने विषय बताइए, मुझे अगर उपयुक्त लगा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के विषय को लाइफ मैनेजमेंट में भी शामिल करूंगा और डेली ऑडियो लेक्चर में भी शामिल करूंगा। राइट फ्रेंड्स, तो आज का जो विषय है वह जल परिवहन पर हम लोग कुछ बातें करेंगे, उसको बाद में आइए कुछ दूसरी जो खबरें हैं उन पर थोड़ी सी एक निगाह बांध लेते हैं। दो बातें इंपॉर्टेंट हैं आपके ध्यान में मैं लाना चाहूंगा मित्रों। एक तो यह कि जो 23वां एशियन शिखर सम्मेलन है, एशियन को आसियान भी कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म ASEAN आसियान शिखर सम्मेलन की सिंगापुर में शुरुआत हो गई है। राइट, यह भी 15 नवंबर तक चलेगा, 5 दिनों का शिखर सम्मेलन है और यह बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन है, बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन है, क्योंकि भारत अपने लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत अब सार्क और आसियान देशों के साथ अपने संबंध लगातार विकसित करने की कोशिश में है। ऐसा क्यों है, क्या है, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, आज के मुख्य विषय में मैंने इसे शामिल नहीं किया है। राइट, तो इसे हम आगे के लिए फ्रेंड्स छोड़ते हैं। आप न्यूज में सुना, आपने न्यूज में भी सुना और अखबारों में भी आप पढ़ रहे होंगे प्रथम विश्व युद्ध को लेकर। मैं तो प्रथम विश्व युद्ध, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी था कि ये इस साल के एग्जामिनेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक। डेफिनेटली प्रथम विश्व युद्ध, वैसे भी चूंकि अभी तो ठीक है उसकी समाप्ति के 100 साल पूरे हुए हैं, इस रूप में इंपॉर्टेंट है, मतलब जो 11 नवंबर 1918 की जो डेट है वह उसकी समाप्ति की डेट है। राइट, तो इस हिसाब से उसके कल 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसको लेकर के कुछ गतिविधियां हो रही हैं, अखबारों में उनकी खबरें भी आ रही हैं, तो इस लिहाज से तो देखिए यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अदरवाइज भी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है और सेकेंड वर्ल्ड वार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री के तहत, तो आपको उसकी तैयारी करनी ही चाहिए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार को इस बार थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ लीजिए, हो सकता है कि इस पर प्री में भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, मेंस में भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, लेकिन प्री में पूछे जाने की संभावना इसलिए कम है कि वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न पूछे नहीं जा रहे हैं, और मेंस में भी देखिए अगर पूछा जाएगा तो एक आध प्रश्न कोई भले ही पूछ लिया जाए, और खासकर मुख्य प्रश्न यही बनता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो संधि हुई है वर्साई की संधि, कैसे उसमें सेकेंड वर्ल्ड वार के बीज नहीं थे, मतलब वही सेकेंड वर्ल्ड वार का कारण बने, इसी को घुमा फिरा करके अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। फ्रेंड्स, अब मैं चाहूंगा कि मुख्य विषय के बारे में आपसे सीधे सीधे बातें करूं और वो है जल परिवहन। मुझे ऐसा लगता है कि जो 2019 का जो मेन एग्जामिनेशन होगा उसमें जल परिवहन पर प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मुझे लगता है कि इस पर भी थोड़ी सी मैं अगर आपसे बात करूं तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर होगा, इससे आपकी क्षमता विकसित हो सकेगी। उदाहरण के तौर पर आप 2018 का जनरल स्टडीज का पेपर उठा करके देखिए, मेंस का, और मैं फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूं, जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर की, तो उसमें आप पाएंगे कि खासकर जल क्षेत्र को लेकर के प्रश्न काफी पूछे गए हैं, और उससे ये लगता है कि नहीं, अब जो जल संसाधन है, चाहे वो पेयजल की बात हो या अंडरग्राउंड वाटर की बात हो या विश्व स्तर के जल की बात हो, बहुत महत्वपूर्ण रोल उसका हो गया है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि 14वां जो प्रश्न जनरल स्टडीज फर्स्ट का, उसमें सीधे सीधे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस के ऊपर पूछा गया है कि भारत में अवक्षयी यानी कि डिप्लीटिंग जो लगातार गिरता चला जा रहा है, भौम जल संसाधनों का आदर्श समाधान जल संरक्षण प्रणाली है, शहरी क्षेत्रों में इसको किस प्रकार प्रभावी बनाया जा सकता है, पहली बात, यानी कि जल इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि ये इसमें पूछा गया है, इसलिए कि अभी आप चर्चा भी सुन रहे हैं लगातार अखबारों में जल संसाधन को लेकर के बहुत लेख प्रकाशित हो रहे हैं। दूसरा एक और प्रश्न मैं आपको फर्स्ट पेपर का ही बताता हूं, औद्योगिक गलियारों को लेकर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, भारत में औद्योगिक गलियारों का क्या महत्व है, औद्योगिक गलियारों को चिन्हित करते हुए उनके प्रमुख अभिलक्षणों को समझाइए, यह 250 शब्दों में लिखना है। आपको ध्यान होगा कि पिछले साल औद्योगिक गलियारों की शुरुआत की गई थी और इस पर हम लोगों ने बहुत विस्तार के साथ बात भी की थी, और मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है कि मैंने वो औद्योगिक गलियारों के आपको नाम भी बताए थे कि ये कहां कहां से होकर के कैसे गुजरेंगे और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब आप देखिए कि अगर हम औद्योगिक गलियारों की बात कर रहे हैं और उसे बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं, तो क्या हम जल मार्ग को महत्वपूर्ण नहीं मान सकते? अब आइए मैं मूल बात पर आता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। आपने न्यूज में सुना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी बकायदे बनारस में आज प्रयागराज हल्दिया वाटर हाईवे की पहले मल्टी मॉडल टर्मिनल का शुभारंभ कर रहे हैं। आप जब तक सुनेंगे तब तक वो कर चुके होंगे, राइट? यह है प्रयागराज हल्दिया वाटर हाईवे, राइट? इसका मतलब यह हुआ कि जो वाटर हाईवे है, जिसको राष्ट्रीय जलमार्ग आप कह सकते हैं, उन पर सरकार का बहुत ज्यादा जोर है। और अगर हम अभी की सरकार की बात करें तो आपको मालूम है कि 2015 में इसी सरकार ने सागरमाला प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, सागरमाला प्रोजेक्ट। और ये जो सागरमाला प्रोजेक्ट है, इसका उद्देश्य ही है कि कैसे देश में जो बंदरगाह हैं, उन बंदरगाहों को आपस में जोड़ करके एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिया जाए, एक आर्थिक रूट बना दिया जाए। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर इस तरीके का आर्थिक रूट बनाया जा सका तो उसका कितना जबरदस्त पॉजिटिव इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर पड़ेगा। एक तो सड़कों पर भीड़ भाड़ कम हो जाएगी, प्रदूषण भी कम होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जल मार्ग से जो परिवहन होता है वो बहुत ही सस्ता होता है अपेक्षाकृत सड़क मार्ग के, तो वह भी कम होगा, मतलब आर्थिक रूप से भी इसमें बहुत अधिक मदद मिलेगी। और सरकार का ये लक्ष्य है कि जो माल ढुलाई, स्पेशली लगभग 15% माल ढुलाई नेशनल वाटर हाईवे के जरिए होने लगे, 15%, अभी तो हम बहुत कम 1% के लगभग कर रहे हैं, जो नहीं के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में प्रयागराज हल्दिया वाटर हाईवे की शुरुआत इस क्षेत्र में किया जाने वाला, आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही शुभ शुरुआत है। अब आप देखें कि दो प्रश्न सीधे सीधे बनते हैं, पहला तो यह है कि एक छोटा सा प्रश्न बनता है इसी के ऊपर कि ये जो प्रयागराज हल्दिया वाटर हाईवे है ये क्या है, छोटा सा टिप्पणी जैसा, जो खासकर हम स्टेट सिविल सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। और दूसरा, जल परिवहन का महत्व भारत के संदर्भ में क्या है और कैसे है, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। जहां तक का दोस्तों इस प्रोजेक्ट की बात है, प्रयागराज हल्दिया जल मार्ग की, ये तो इसे इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी बना रही है, इसमें बकायदे यात्री जहाज भी चलाने की योजना है, वो भी चलेगा। और इससे इसका एक और भी नाम है, वो है गंगा भगीरथ हुगली नदी सिस्टम। गंगा भगीरथी हुगली नदी सिस्टम ये भी नाम है, और इसका जो ज्यादा पॉपुलर नाम है वो है प्रयागराज हल्दिया जल मार्ग नेशनल वाटर वे वन, या आप इसे सीधे सीधे कह सकते हैं नेशनल वाटर वे वन, याद रखिएगा क्योंकि प्री में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेशनल वाटर वे वन जो प्रयागराज हल्दिया जल मार्ग है, और इसकी जो टोटल दूरी है, लेंथ है, वो है 1620 किलोमीटर। और इस प्रकार से यह हमारे देश का सबसे लंबा जलमार्ग है, और यह चार राज्यों को आपस में जोड़ेगा। वो राज्य हैं पश्चिम बंगाल, देखिए हुगली पश्चिम बंगाल याद रखिए, झारखंड, बिहार और यूपी, ये चार राज्य इससे जुड़ेंगे। और इसके जुड़ जाने से जो हमारा उत्तर भारत है, इसके शुरू हो जाने से उत्तर भारत फिर सीधे सीधे हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, जल मार्ग के जरिए उनसे जुड़ जाएगा। और साथ ही साथ बहुत से उस क्षेत्र में जो पड़ोसी देश हैं, उदाहरण के तौर पर बांग्लादेश है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, थाईलैंड है, और भी जो साउथ एशिया के जो देश हैं उनसे ये जुड़ जाएगा उत्तर भारत। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा आर्थिक कदम होगा। तो दोस्तों ये आपके मैंने बताया प्रयागराज हल्दिया वाटरवे के बारे में। अब आइए थोड़ा सा हम जलमार्ग की स्थितियों को देख लेते हैं, कॉमन बातों को जान लेते हैं। एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो 1987 में केंद्रीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण बना था, उसे इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि किस तरीके से वो जल्दी से जल्दी वाटरवे तैयार करे। 1987 में केंद्रीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण। जब हम भारत के जल परिवहन के बारे में बात करते हैं तो दो भागों में उसे हम विभाजित करते हैं, एक आंतरिक जल मार्ग यानी कि जब हम अपनी नदियों के जरिए जल मार्ग से जुड़ते हैं, और दूसरा है सामुद्रिक जल मार्ग जब हम समुद्र के जरिए दूसरे देशों से जुड़ते हैं। और आप जानते हैं कि प्राचीन काल में जो भारत का व्यापार होता था वो समुद्री जल मार्ग के द्वारा ही हुआ करता था। भारत में बहुत ज्यादा इस बात की संभावना है कि वो आंतरिक जलमार्ग को विकसित करे। लगभग 14,500 किलोमीटर जलमार्ग क्षेत्र है, जिसमें से अभी मुश्किल से 3700 किलोमीटर के आसपास का विकास किया गया है, और थोड़ा बहुत उपयोग होता है, वो भी हम पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जबकि आप देखें कि हमारे यहां इतनी सारी नदियां हैं, और जलमार्ग के लिए जो बहुत उपयुक्त नदियां मानी जाती हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उसमें गंगा है, यमुना है, हुगली है, ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ऐसे बड़ी वेल नोन नदियां हैं। इन सबको जलमार्ग से बकायदे जोड़ा जा सकता है। फ्रेंड्स, जो नेशनल वाटर वे है ये केंद्र सरकार के विषय हैं, केंद्र सरकार विकसित करेगी, और जो नदी जल प्रणाली जो राज्यों में है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, और इन्हें विकसित करने के लिए अब भारत सरकार ने 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है। 100% इसमें विदेशी निवेश किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि ये भी आंकड़ा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि भारत में छोटे और मध्यम दर्जे के लगभग 200 बंदरगाह हैं। 200 बंदरगाह, आप कल्पना करके देखिए कि अगर इन्हें सच में उपयोग में लाया जा सका तो कितना बड़ा आर्थिक लाभ इससे भारत को मिल सकता है। अब ये बात अलग है कि हमारे पास नदियां हैं और इनको लेकर के थोड़ी बहुत अलग तरह की दिक्कतें होती हैं, जैसे कि साउथ की जो नदियां हैं आप जानते हैं कि उसमें कुछ मौसम ऐसे होते हैं जबकि जल स्तर में गिरावट हो जाती है। यहां तक कि जो नॉर्थ की नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं उनमें तो थोड़ा बहुत पानी रहता है, अदरवाइज गर्मियों में सूखने लगती हैं। सिंचाई के कारण भी पानी का बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो जाता है तो नदियों में पानी कम हो जाता है। नदियों में गाद जमने की समस्याएं हैं, ये सारी समस्याएं हैं जो जल परिवहन के रास्ते में बाधा पहुंचाती हैं। फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि इनके उपाय नहीं है, बकायदे इनके उपाय हैं, और जब जल परिवहन को विकसित किया जाएगा तो डेफिनेटली इनकी भी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं से होंगी ही। दोस्तों ये जल परिवहन के बारे में कुछ बातें थी। अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर, आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, रघुवीर शाह, अनुभव आनंद हावड़ा पश्चिम बंगाल से, राहुल कुमार समस्तीपुर बिहार से, योगेश पूर्बिया उदयपुर राजस्थान से, प्रणव राज, कृष्ण कुमार, सतीश जायसवाल सिंगरौली मध्य प्रदेश से और आकांक्षा तिवारी कांकेर छत्तीसगढ़ से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।